ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद पर हुए नियुक्त, कल सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। त्रिशूली नदी में लापता हुई बसों और यात्रियों की तलाश के लिए गंदे पानी में भी खोज सकने वाले तकनीक विदेश चलाने की पहल हो रही है, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। और अमेरिका के पेंसिल्वानिया में रैली के दौरान गोली चलने से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए घायल। अब समाचार विस्तार से। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एमाले अध्यक्ष ओली को नेपाल के संविधान की धारा 76 की उपधारा 2 के तहत आज प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। इस बात का उल्लेख राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराय द्वारा जारी किए गए बयान में किया गया है। प्रतिनिधि सभा के सबसे बड़े दल नेपाली कांग्रेस के समर्थन में एमाले अध्यक्ष ओली नेपाल के 45वें प्रधानमंत्री बने हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रतिनिधि सभा की बीते शुक्रवार की बैठक में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, जिसके बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले 2 या 2 से अधिक दलों के समर्थन में बहुमत प्राप्त कर सकने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य को प्रधानमंत्री पद के लिए आज शाम 5 बजे तक अपना दावा पेश करने का आह्वान किया था। राष्ट्रपति के आह्वान के बाद कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देवा और एमाले अध्यक्ष ओली ने दल के नेता की हैसियत से संसद के बहुमत सदस्यों के हस्ताक्षर सहित अध्यक्ष ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए शुक्रवार को ही दावा पेश किया था। प्रधानमंत्री ओली का शपथ ग्रहण कल सुबह 11 बजे होगा, ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय ने दी है। नवनियुक्त प्रधानमंत्री ओली ने सामाजिक संजाल पर सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया है। प्रतिनिधि सभा की कल दोपहर 1 बजे के लिए निर्धारित बैठक कल शाम 4 बजे तक के लिए टल गई है। संघीय संसद सचिवालय ने आज एक सूचना जारी कर बताया है कि कल दोपहर 1 बजे के लिए निर्धारित बैठक विशेष कारण से कल शाम 4 बजे के लिए पुनः निर्धारित की गई है। इसी तरह राष्ट्रीय सभा की कल सुबह 11:30 बजे के लिए निर्धारित बैठक भी कल दोपहर 3:15 बजे के लिए टल गई है। इस बात का उल्लेख भी संसद सचिवालय की सूचना में किया गया है। नेपाल बार एसोसिएशन ने काठमांडू घोषणा पत्र 2081 के क्रियान्वयन संबंध में आज प्रधान न्यायाधीश विश्वंभर प्रसाद श्रेष्ठ का ध्यानाकृष्ट किया है। बार के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण खिमिरे ने काठमांडू घोषणा पत्र के बारे में जानकारी देते हुए इसे क्रियान्वित करने को लेकर प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ का ध्यानाकृष्ट किया। मौके पर प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ ने कहा कि घोषणा पत्र क्रियान्वित करवाने के विषय में वे काम कर रहे हैं और बार द्वारा रखी गई मांग को लेकर वे गंभीर हैं। बता दें कि बार ने न्याय परिषद द्वारा विक्रम संवत 2080 आश्विन 1 गति न्याय परिषद नियमावली के नियम 11 में किए गए संशोधन से उच्च अदालत में नियुक्त होकर कार्यरत न्यायाधीशों की वरीयता पर असर पड़ने और नेपाल के संविधान की धारा 141 की उपधारा 3 की संवैधानिक व्यवस्था में उलझे हुए विषय को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखा था। बीते शुक्रवार को भरतपुर के सिमलताल में भूस्खलन के साथ 2 बसों के त्रिशूली नदी में गिरकर लापता होने की दुर्घटना के बाद बरामद हुए 5 शवों की शिनाख्त हुई है। चितवन की भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नंबर 28 स्थित गोलाघाट और नवलपरासी पूर्व स्थित गैंडाकोट में पाए गए अतिरिक्त 2 शव भारतीय नागरिकों के होने की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन कार्यालय चितवन के अनुसार गोलाघाट में पाया गया शव भारतीय राज्य बिहार के 37 वर्षीय जयप्रकाश ठाकुर का है। इसी तरह बिहार के ही बेतिया जिले की मझिलिया थान के निवासी 30 वर्षीय सजाद अंसारी का शव गैंडाकोट नगरपालिका वार्ड नंबर 7 में पाया गया। बता दें कि इस हादसे में करीब 65 लोग लापता हुए थे और अब तक 5 लोगों के शव बरामद हुए हैं, बाकी लापता लोगों की तलाश हो रही है। इसी बीच गृह सचिव एक नारायण अर्याल ने बताया है कि त्रिशूली नदी में लापता हुई बसों और यात्रियों की तलाश के लिए गंदे पानी में भी खोज सकने वाली तकनीक विदेश से लाने की पहल हो रही है। सिमलताल भूस्खलन की चपेट में आकर त्रिशूली नदी में लापता हुई बसों और यात्रियों की खोज की प्रगति संबंध में जानकारी लेने के लिए उच्च सुरक्षा अधिकारियों के साथ चितवन पहुंचे अर्याल ने बताया कि अतिरिक्त तकनीक लाने के संबंध में दात्री निकायों और विभिन्न देशों के दूतावासों के साथ बातचीत हो रही है। गौरतलब है कि इसी आषाढ़ 28 गते सुबह करीब 3:30 बजे भरतपुर महानगर पालिका के सिमलताल में काठमांडू से गौर जाती हुई गणपति डिलक्स और वीरगंज से काठमांडू की तरफ आती हुई एंजल बस भूस्खलन के साथ त्रिशूली नदी में गिर गई। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। रेडियो नेपाल ने आज से दो और भाषाओं राजवंशी और बैतरडेली में समाचार प्रसारण शुरू किया है। विराटनगर महानगर पालिका प्रमुख नागेश कोइराला ने कहा कि रेडियो नेपाल तारिणी प्रसाद कोइराला स्मृति संचार ग्राम द्वारा महानगर एफएम से राजवंशी भाषा में समाचार प्रसारण शुरू होने से भाषा और संस्कृति के विकास को अतिरिक्त बल मिला है। महानगर एफएम रेडियो विराटनगर से आज से शुरू हुए राजवंशी भाषा में समाचार प्रसारण के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान महानगरपालिका प्रमुख कोइराला ने ये बात कही। मौके पर रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक एवं संचार ग्राम संचालक समिति के अध्यक्ष बुद्धि बहादुर केसी ने कहा कि संचार ग्राम से मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी संचालित किए जाएंगे। संचार ग्राम संचालन के लिए सरकार के सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि संचार ग्राम से ई लाइब्रेरी, रेडियो म्यूजियम संचालन के साथ साथ संगीत प्रशिक्षण और संचार कर्मियों की क्षमता अभिवृद्धि के कार्यक्रम और विभिन्न भाषाओं के गीत संगीत रिकॉर्डिंग भी शुरू हुए हैं। बता दें कि आज से शुरू हुआ राजवंशी भाषा में समाचार रोज दोपहर 1:45 पर प्रसारित होगा। आज ही रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण कार्यालय दीपायल से बैतरडेली भाषा में समाचार प्रसारण का शुभारंभ भी हुआ है। बता दें कि बैतरडेली भाषा में समाचार हर रोज दोपहर 3:15 पर प्रसारित होगा। मॉनसून से उत्पन्न आपदा में जान गंवाए हुए बागलों के दो परिवारों को जिला प्रशासन कार्यालय ने 6.5 लाख रुपए की राहत मुहैया कराई है। बता दें कि मॉनसून से उत्पन्न आपदा से गलकोट नगर पालिका में एक ही परिवार के दो व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं बागलोंग नगर पालिका में एक महिला की मौत हो गई। स्यांगजा में आज कुएं में डूबने से दो किशोरियों की मौत हो गई है। जिले की पुतली बाजार नगरपालिका वार्ड नंबर 4 रामकोश स्वारा स्थित कुएं में डूबने से स्थानीय नरेंद्र बहादुर थापा की दो बेटियों 14 वर्षीय लक्ष्मी थापा और 12 वर्षीय सुष्मिता थापा की हुई मौत की जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस के मुताबिक घर से करीब 500 मीटर दूर रहे कुएं में नहाने और कपड़े धोने के लिए गई दो किशोरियों की कुएं में डूबने से मौत हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पेंसिल्वानिया के बटलर में एक रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। इस घटना में ट्रंप बाल बाल बच गए। रैली में भाषण देते वक्त ट्रंप पर एक व्यक्ति ने गोली चलाई थी, लेकिन गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूते हुए निकल गई। सीक्रेट सर्विस के सुरक्षाकर्मियों ने ट्रंप को मंच से वापस उतारा। एफबीआई ने ट्रंप पर जानलेवा हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के तौर पर की है। पूर्व राष्ट्रपति पर हमला करने के कुछ देर बाद ही सीक्रेट सर्विस ने क्रूक्स को गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। क्रूक्स पेंसिल्वानिया में रैली की जगह से 1 घंटे की दूरी पर स्थित बेथेल पार्क के रहने वाले थे। राज्य मतदाता रिकॉर्ड के अनुसार वे एक पंजीकृत रिपब्लिकन थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार जब क्रूक्स 17 वर्ष के थे, उन्होंने एक्ट ब्लू को $15 का दान दिया था। एक्ट ब्लू एक राजनीतिक एक्शन कमेटी है जो कि वामपंथी और डेमोक्रेटिक राजनेताओं के लिए फंड जुटाती है। अधिकारियों ने बताया कि हमलावर को सुरक्षाकर्मियों ने गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पिट्सबर्ग ट्रिब्यून रिव्यू के मुताबिक क्रूक्स ने सन 2022 में बेथल पार्क हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की। इसके अलावा उन्हें नेशनल मैथ और साइंस इनिशिएटिव से $500 का स्टार अवार्ड भी मिल चुका था। हमलावर के 53 वर्षीय पिता मैथ्यू क्रूक्स ने समाचार चैनल CNN को बताया वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ था। उनका कहना है कि वो एजेंसियों से बात करने के बाद ही कुछ बताना चाहेंगे। वहीं कानूनी एजेंसियों ने बताया कि क्रूक्स शूटिंग वाली जगह पर बिना किसी पहचान पत्र के ही गए थे। उनकी शिनाख्त भी दूसरे तरीकों से की गई थी। हालांकि अभी तक इस हमले के पीछे के मकसद का पता नहीं चल पाया है, पर अधिकारी इसे हत्या का प्रयास ही बता रहे हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री पद पर हुए नियुक्त, कल सुबह 11 बजे लेंगे शपथ। त्रिशूली नदी में लापता हुई बसों और यात्रियों की तलाश के लिए गंदे पानी में भी खोज सकने वाली तकनीक विदेश से लाने की पहल हो रही है, गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। और अमेरिका के पेंसिल्वानिया में रैली के दौरान गोली चलने से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार एवं पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हुए घायल। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।